और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा 6472903773 6472903773।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ elections.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ elections.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-463-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैंडफाई के जरिए। पैसे पहुंचे मिनटों में, वो भी आसान और महफूज तरीके से, गुड एक्सचेंज रेट के साथ। $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजेक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें। यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। लैंडफाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज ही लैंडफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lamfi.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। वेलकम बैक टू आवर जो हमें सुन रहे हैं 770 AM ड्राइवर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आपका हमारा साथ बना रहेगा आज भी 8 बजे तक। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और खबरों के सिलसिले में शाजिया मलिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उनके लिए शैंपेन कलर का कारपेट बिछा देते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है तो मैं चाहता हूं उनको थोड़ा VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जाहिर है 2 दिन छुट्टी भी करके आई है, रेस्ट करके आई है, फ्रेश आपके लिए गर्मा गर्म खबरें भी जो हैं वो लेकर आ गई हैं स्टूडियो में। कुछ उनके फॉलोअर्स उनको तंग कर रहे हैं आई थिंक, जिनको वो बंद कर रही हैं, तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहु।
WS हमवतनों कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक हो।
मेरे अजीज हमवतनों बोले हाँ। पूरा
मेरे अजीज हमवतनों ठीक हो।
सिर्फ हमवतनों नहीं होते
हाँ।
अजीज हमवतनों
ठीक हो
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा हम तो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह जो है वो बिल्कुल फिटे मुंह बना हुआ है।
ऐसा क्यों?
क्योंकि इतना एक्नी आ गया फेस के ऊपर, पता नहीं क्या हुआ है। जवानी आ रही है होले होले
मतलब लोगों के मसाइल देखें क्या क्या। यहाँ टैरिफ के मसले, इलेक्शन का प्रेशर सर पर है, वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए दिन को नया नया ट्वीट डाल देते हैं, कोई मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये दुनिया भर के लीडर्स मेरे पास मिलने आ रहे हैं मुझसे और बार्गेनिंग करवा रहे हैं मुझसे डील कर रहे हैं। ये मसले अलग चल रहे हैं, गंभीर मसले बहुत ही। चाइना अलग वहां जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, चाइना को इंडिया को बल्कि इन्वाइट कर रहे हैं। GSU मीटिंग जो अभी मैं खास SEU है, पता नहीं कौन सी मीटिंग होने वाली है, उसमें आप आए, हम बायलेटरल बातचीत करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मसले क्या है? इतनी व्हाट इज दिस मैन। दुनिया के मसले देखो किस लेवल के, कितने गंभीर हैं
भाई। हमने तो अपनी बुद्धि देखनी है ना, तो हमारा मुंह अगर फिटे मुंह बना होएगा तो हमने तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उसी के ऊपर करना है ना,
उसी के ऊपर।
हाँ हाँ, हमें क्या लेना देना है कि दुनिया में टेररिस्ट चल रहे हैं कि नहीं टेररिस्ट, और मरेंगे तो भी साथ में मरेंगे भी, क्या कर सकते हैं, है ना।
अच्छा
हाँ, सारे अजीज हम वतन जो है
सारे साथ जाएंगे, मरेंगे ना हम वतनों,
हम वतनों इकट्ठे मरेंगे ना, सारे अजीज हम वतनों इकट्ठे मरेंगे।
हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान।
ट्रम्प साहब ड्रोन साहब
देखें ऐसा ना करें।
अच्छा
लोगों के ना आजकल वैसे ही
हटी हुई है, लोगों
हटी हुई नहीं, उनका ब्लड प्रेशर ना काफी مطلب اوپر نیچے رہتا ہے.
چلو ٹھیک ہے,
خبریں آپ خبریں سنا دیں اور اس سے پہلے کہ فائر ہو
جائے ان
کی, ہم فائر ہو جائیں تو آپ خبریں سنا دیں.
ٹھیک ہے جی. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجہ بادشاہ جی. راجہ بادشاہ جی کے پاس آپ نے جانا ہے, گر آپ کو میں نے بتا دیا, عامر کا نام لینا ہے اور کہنا جی میرے بھی 1575 بچاؤ یا 1717, ہاں 1775 بچاؤ جی. پھر پورے یورپ کے آپ ٹور پہ جانا, ٹھیک ہے جی. آپ کو اگر ہوم اور آٹو انشورنس چاہیے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, آل اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو آپ فیصل چٹا جی کے پاس جا سکتے ہیں. ان کے دو ریسٹورینٹس ہیں ولیج اسٹیٹس کے, ایک جو ہے مسساگا میں اور ایک اوکویل میں, تو آپ ادھر جا کے انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اچھے دانت, چمکیلے قسم کے دانت چاہیے, یعنی کہ سنگر چمکیلا نہیں, دانت چمکیلے اگر آپ کو چاہیے, تو آپ کو نازیہ رحمان کے پاس جانا پڑے گا. ان کا دوسرا ڈینٹسٹری آفس جو ہے رجوے کے اوپر ہے, آپ وہاں پہ جائیں اور آپ اپنی ساری سہولتیں لیں. اچھا جناب, یہ بہت ہی زبردست ٹیپ ٹیپ سینڈ جو ہے, یہ ایک نیا, آپ کو پتا یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, یہ ہر سال جو ہیں, تو ظاہر ہے ہماری سروس اتنی اچھی ہے جی. تو یہ اب پھر سے اپنا نیا راؤنڈ چلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا ڈاؤن لوڈ کر لے ایپ اور آپ یوز کر لے یہ کوڈ جو ہے ریڈیو 20 ٹو گیٹ این ایڈیشنل 20% آن یور فرسٹ سینڈ آف 200 اور مور. یعنی کہ یہ بھی ایک سروس ہے جس سے کہ آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں یہاں پہ ٹیپ ٹیپ سینڈ. تو اس کے یہ بھی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھے ان کے بھی ریٹس ہیں, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور ہمارے سلطان بھائی اگر آپ کو بنڈل ڈیلز چاہیے ہے الیکٹرانکس کی, تو آپ برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہے سلطان بھائی, ان کے پاس جائیں اور بہت زبردست آپ کو ملیں گے. اور پائل جیولرز اسلم بھائی ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کے گھر کا اوکیجن ہے تو آپ ان کے پاس جائیے اور آپ تھوک کے حساب سے جناب جو ہے آپ جیولری لے سکتے ہیں. یعنی کہ بہت ڈفرینٹ قسم کے پرائز اس کے اوپر ہے نا لیولز پہ, تو آپ کافی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت سارے لے سکتے ہیں. اور QTL اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ٹرک کا ہیلتھ اچھا رہے تو آپ QTL کے پاس جائیے, بہت اوتھینٹک آئلز وہ لوگ ڈالتے ہیں, تو اس میں آپ کا جو ٹرک ہے وہ بھاگتا پھرے گا, اس کا صحت بالکل ٹھیک رہے گا اور کوئی اتنا ٹائم نہیں لگاتے ہیں. ایک طرف سے آپ انٹر ہوئے 15 منٹ میں آپ کے سارے کام کر دیتے ہیں, دوسرے گیٹ سے آپ باہر نکل جاؤ. اچھا جناب, جیسے کہ جب سے الیکشن شروع ہوا ہے دو خبریں تو ہم آپ کو روز سناتے ہیں. ایک تو یہ کہ پولز کیا کہہ رہے ہیں اور لیڈرز کہاں پہ ہے, آپ نے نوٹ کیا ہی ہوئے گا یہ, تو ہم آپ کو روز ایوری سنگل ڈے جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہم آپ کو روز یہ دو خبریں سناتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو آج بھی یہ بتائیں گے. آج جو نینوس کا پول آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی لبرل پارٹی پھر سے 8 points کا ان کو ایڈوانٹیج ہے, اور دس از ڈے 30th آف 36 ڈے فیڈرل الیکشن. اور اب آپ کو پتا ہے ایک ہفتہ ہی اور رہ گیا ہے. لبرلز ابھی بھی 44% پہ ہیں, کنزرویٹو 36, NDP 11, بلاک کیوبیک 6, گرینز 3, پیپلز پارٹی آف کینیڈا 1% پہ. لبرلز جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سپورٹ اسٹرانگ رکھے ہوئے ہے ابھی بھی آنٹیریو, اٹلانٹک, کینیڈا, کیوبیک اور BC میں. کنزرویٹوز فریریز میں ابھی بھی اسٹرانگ ہے. آنٹیریو میں جو لبرلز کی سپورٹ ہے 47%, کنزرویٹو 37%, NDP 12%. یہ اوپر گئی ہے تھوڑی سی, آپ کو پتا ہی ہے نا 8-9 پہ تھی ہے, تو یہ تھوڑی اوپر گئی ہے. کیوبیک کے اندر جو لبرلز ہیں وہ 42% پہ ہیں, کنزرویٹو 22, بلاک 24, فریریز میں کنزرویٹو 54% پہ ہے, لبرلز 35% پہ, NDP 10%, BC کے اندر کنزرویٹو جو ہے نیچے آئے ہیں, ہم آپ کو بہت دنوں سے بتا رہے ہیں, 35% پہ ہیں, لبرلز 46, اٹلانٹک کینیڈا میں لبرلز جو ہے وہ 49% پہ ہیں, کنزرویٹو 37%, NDP 10%, 50% آف ویمن جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم لبرلز کو سپورٹ کریں گے, 27% ویمن کنزرویٹوز کو کریں گی اور 13% NDP کو, 38% مین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم لبرلز کو کریں گے, بہت بڑی تعداد میں 45% مین کہتے ہیں کہ ہم کنزرویٹوز کو کریں گے, 8% NDP کو. کنزرویٹوز جو ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے امنگ ووٹرز انڈر 35, 43% جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, 37% لبرلز کو, 11% NDP کو. کنزرویٹوز جو ہے اس کے پاس 43% سپورٹ ہے ان پیپل ایج 35-54, لبرلز کے پاس 37%, NDP 11%, 52% آف دوز ایج 55-11 جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بیک کریں گے لبرلز کو, 32% کنزرویٹو, 7% NDP. پریفرڈ PM جو ہے ابھی بھی کارڈی صاحب ہے اور وہ کہتے ہیں جی 49% کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے, 32% کا پی اے پالیا اور سنگھ صاحب کے ساتھ 8%. آج جو ہیں پھر سے لیڈرز جو ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ تھے اور کہاں کہاں پہ تھے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کرنی صاحب جو ہے وہ اپنا جو ہے لبرل پلان بتا رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل, یہ انہوں نے جو کہا کہ ہم 130 بلین ڈالرز جو ہے اس کا سپینڈنگ کریں گے. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ اس میں تو آپ بیلنس نہیں کر پائیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہم کو اس وقت سپینڈنگ کی ضرورت ہے. یہ آج شارلٹ ٹاؤن پی ای آئی کے اندر تھے اور اپنا جو پورا فلی کاسٹڈ جو پلیٹ فارم تھا اس کو اناؤنس کر رہے تھے, اور لوگوں نے کہا کہ کمپیئر ٹو پی ایم جان کرسٹین اور پال مارٹن سے آپ کا بہت زیادہ یہ ہے بجٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کریڈینز جو ہیں وہ ایک بہت ہی ورسٹ کرائسس آف دیئر لائف ٹائم کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم جو ہے سپینڈنگ کا ہے. ہم اس کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے 2% پہ, لیکن نیو میجرز جو ہیں وہ لانے زیادہ ضروری ہے. ہم ڈیفیسٹس میں رن کریں گے ایٹ لیسٹ ٹل 28-29 تک. انہوں نے بہت زیادہ آج کریٹیسائز کیا پی اے پالی ایف کو. انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے, تو پتا نہیں کیا یہ ہائڈ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنا فلی کاسٹڈ پلان جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. اور پھر ان سے لوگوں نے ہنس کے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ نے اپنا نمبر کیوں دیا فرانکوا بلانشے کو جو کہ بلاک کے بیکوا کے لیڈر ہیں. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے, کہنے لگے کہ ہی از ریئلی نائس گائے. آپ کو پتا ہی ہے نا کہ جو فورڈ صاحب ہے وہ بھی اپنا نمبر لوگوں کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے بھی اس لیے ان کو دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ کیئر پلان جو ہے اس کے اندر ہم نیو میڈیکل اسکولز اور نئے ڈاکٹرز کریں گے, کنسٹرکشن کریں گے, رینوویٹ کریں گے کمیونٹی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو, ایک لانچ کریں گے. انہوں نے کہا ٹاسک فورس فار پبلک ہیلتھ کیئر انوویشن, یہ ایک نیو گلوبل ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ہم کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے اور ریکگنائز کریں گے انٹرنیشنلی ٹرین ڈاکٹرز اینڈ نرسز کو. پی اے پالی ایف صاحب نے آج کہا جی میں 2.3 ملین گھر بناؤں گا ان دا نیکسٹ 5 ایئرز. آج ٹورنٹو میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ لبرلز کی وجہ سے یہ کرائسس جو ہے ہاؤسز کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پرائسز بہت اوپر چلے گئے ہیں, اور کارنی کی گمت اس سے بھی برا کرے گی, لائف کو بہت ہی ان افورڈیبل یہ بنائیں گے اور اب امپاسبل ہو گیا ہے یوتھ کے لیے گھر اپنا خود کا خریدنا. اس کے علاوہ انہوں نے پھر سے کہا جی میں سیلز ٹیکس جو ہے آن نیو ہومز ان کو کٹ کروں گا, ڈیولپمنٹ چارجز کو کٹ کروں گا اور سٹیز کو بولوں گا کہ 15% مور ہومز بنائیں. جگمیت سنگھ صاحب آج پھر سے بی سی کے اندر تھے, انہوں نے آج کچھ اناؤنسمنٹس کیے ہیں نینمو کے اندر, اس کے بعد پھر وہ ٹریول کر گئے کوموکس میں اور پھر وہ پورٹ موڈی میں تھے. فرانکا بلانشے جو تھے وہ کیوبیک سٹی میں تھے, اس کے بعد وہ چلے گئے سینٹ رینی, وہاں پہ وہ وٹنس کرنا چاہتے تھے پلے آف ہاکی. پھر انہوں نے اب واچ کرنا ہے مونٹریال کینیڈینز جو کہ کھیلیں گے اب واشنگٹن کیپٹلز کے اگینسٹ. گرین پارٹی کے جو لیڈرز ہیں جوناتھن پیڈنالٹ اور ایلزبتھ مے وہ اپنے رائڈنگز میں ہی ہیں آؤٹر مونٹ اور سینٹ گلف آئیلینڈ کے اندر, اور جو ہے یہ وہاں پہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں. آج جو ہے 21 اپریل ہے اور آج جو ہے لاسٹ ڈے بھی ہے ایڈوانس پولنگ کا. 2 ملین جو کینیڈینز ہیں ابھی تک پولنگ کر چکے ہیں. آج کی جو سب سے بڑی جو افسوس کی خبر تھی وہ تو وہی ہے پوپ فرانسس کی جو ڈیتھ آج ہوئی ہے. نان ٹریڈیشنل پیپسی انہوں نے شروع کی تھی اور اپولوجائز کیا تھا, جو رومن کیتھولک چرچ کا رول تھا ریزیڈینشل سکول ابیوزز کے اندر کینیڈا میں, جب یہ کینیڈا آئے تھے تو اس کے لیے انہوں نے سوری کیا تھا. 88 ایئرز ان کی ایج تھی, ان کو پیپلز پوپ بھی کہا جاتا تھا, بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسونا تھا ان کا, اور ہی واز دا فرسٹ پوپ فرام دا امیرکاز. یہ ڈیپلی لیکن جو ڈیوائڈیڈ اب لبرل اور کنزرویٹوز ہیں ان کے بیچ میں یہ ایک جو ہے انکلوسیو چرچ بنانا چاہتے تھے, لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ اب یہ لڑائی کہاں تک جائے گی. آج جتنے بھی چرچ تھے روم میں ان کے اندر بیلز جو تھی وہ بجتی رہی, اور انہوں نے پھر اناؤنس کیا جو تھا, یہ جو اناؤنسمنٹ ان کی ڈیتھ کا تھا یہ ایک ریڈ آؤٹ جو پڑھا انہوں نے کارڈینل کیوین فیرل نے فرام چیپل آف ڈوما سینٹ مارٹا جہاں پہ کہ پوپ فرانسس رہتے تھے. اور خبر یہ آئی تھی کہ ان کا جو رائٹ لنگ تھا جب چھوٹی ایج تھی تو ان کا ریموو کر دیا گیا تھا آفٹر پلمنری انفیکشن, اور اس کے بعد یہ کافی ریسپریٹری انفیکشن جو تھے اس سے یہ سفر کرتے رہتے تھے. ڈاکٹرز نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ فرانسس صاحب کی فیئر کنڈیشن ہے, جب ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا جمیلی ہاسپٹل ان روم ان فیبروری, ان کو برونکائٹس ہو گیا تھا اور ان کے بارے میں ویٹیکن نے کہا کہ ان کو اور بھی زیادہ ٹریٹمنٹ چاہیے کیونکہ ان کو نمونیا آ گیا ہے دونوں لنگز کے اندر, اور ایزمیٹک برونکائٹس بھی آ گیا ہے جس کے لیے ان کو ہاسپٹل میں ڈالا گیا تھا. لیکن پھر بھی یہ آئے تھے سامنے ایسٹر سنڈے کو اور انہوں نے اپنی لاسٹ پبلک اپیئرنس دی تھی, بلیس کیا تھا تھاؤزنڈ آف لوگوں کو جو کہ سینٹ پیٹر اسکوئر میں تھے. اس کے بعد یہ بریفلی جو ہے یو ایس وائس پریزیڈنٹ جیری وینس جو ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. آن مارچ 13, 2013 ही बिकेम द 266th पोप एट द एज ऑफ 76। और एक जो इंडिजिनस जो लोगों का एक डेलीगेशन यहां पे कनाडा से रोम इनको मिलने के लिए गया था अप्रैल 2022 में, उसमें इन्होंने सॉरी बोला था। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कनाडा में भी आके किया था, 4 मंथ्स के बाद ये 6 डे के विजिट पे यहां पे भी आए थे और इन्होंने ये बता दिया था कि ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पोप हैं। ये अपना ओल्ड आयरन पेक्टोरल क्रॉस पहनते थे, प्लेन व्हाइट कैसॉक पहनते थे जो कि बड़ा कंट्रास्ट है टू रेड वेलवेट केप जो कि इनके प्रेडिसेसर बेनेट 16 जो थे वो पहनते थे, जैसे कि 2005 के कॉन्क्लेव के अंदर। उनके रेजिग्नेशन के बाद बड़ा ही सरप्राइज रेजिग्नेशन था। फ्रांसिस जो थे ही वॉज बॉर्न एज जॉर्ग मारियो बर्गोलियो, ही बिकेम द फर्स्ट पोप आउटसाइड ऑफ ईयू इन ओवर अ मिलेनियम। इनको बिलीव किया जाता था कि चर्च जो है, ये बिलीव करते थे कि चर्च जो है उसको अंदर ही नहीं रहना चाहिए, स्ट्रीट्स पे होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए जिनको ये सर्व करते हैं। तो आज जब इनकी डेथ हुई तो ग्लोबल लीडर्स ने बहुत ज्यादा कंडोलेंसेस बहुत सारे इनको भेजे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि प्रिंस चार्ल्स और किंग चार्ल्स और उनकी जो बेगम है कमिला, उनके साथ भी इनके मुलाकातें जो है वो हुए थे। अच्छा, अब जबकि इनकी डेथ हो गई है तो अब इनके सक्सेसर्स जो है वो कौन कौन हो सकते हैं? कोई 9-10 लोग हैं जो कि सक्सेसर हो सकते हैं, उनकी हम आपको डिटेल्स बताते हैं। एक तो जो है कार्डिनल एवलिन जो है 66 इनकी एज है और इनको जॉन 14 कहा जाता है क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस जो है बहुत ज्यादा है जो जॉन 24 इनको कहा जा रहा है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी जॉन 23 के साथ। ही वॉज बॉर्न इन अल्जीरिया और टू अ फैमिली ऑफ स्पेनिश इमिग्रेंट्स और फिर ये फ्रांस मूव कर गए थे अल्जीरियन इंडिपेंडेंस के बाद। नंबर 2 पे हो सकते हैं पीटर एडो, 72 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन अगर कहते हैं कि इनको इलेक्ट किया गया तो ये कॉम्प्रोमाइज जो है कैंडिडेट समझे जाएंगे और बहुत ज्यादा अपने ख्याल में कंजर्वेटिव है। 3rd नंबर पे मारियो ग्रेच हैं, 68 ईयर्स उनकी एज है, गोजो से माल्टा से आए हैं, बड़ा जो और यूरोपियन यूनियन का स्मॉलेस्ट कंट्री है और बड़ी हम्बल इनकी बिगनिंग थी लेकिन बड़े बड़े इन्होंने फिर काम किए। ही वॉज अपॉइंटेड बाय पोप फ्रांसिस टू बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ साइनॉर्ड ऑफ बिशप, तो बड़े हैवी वेट ये समझे जाते हैं वेटिकन में। 4th नंबर पे हैं जुआन जॉस ओमेला, 79 ईयर्स इनकी एज है और बड़े करीब थे पोप फ्रांसिस के, बड़े गुड नेचर्ड हैं, हम्बल हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, बड़े पैशनेट हैं और ये ही वॉज बोर्न इन स्पेन। 5वें नंबर पे पेत्रो पेरोलिन है, 70 ईयर्स उनकी एज है, ये भी अगर आए तो इनको कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट समझा जाएगा क्योंकि चर्च के अंदर ये बहुत अरसे तक डिप्लोमेट रहे हैं और पोप फ्रांसिस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं सिंस 2013। 6वें नंबर पे हैं लुई एंटोनियो गोकिम टागले, 67 ईयर्स इनकी एज है, इनको एशियन फ्रांसिस भी बोला जाता है लेकिन ये कहते हैं कि मुझे तुम चिटो करके बोलो, फिलीपींस से इनका ताल्लुक है, इटालियन और इंग्लिश बोलते हैं और अगर ये इलेक्ट हुए तो ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पोप फ्रॉम एशिया। 7th नंबर पे हैं जोसेफ टॉबिन, 72 ईयर्स इनकी एज है, अनलाइकली है कि कार्डिनल्स इनको पिकअप करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि ये अमेरिकन है और लोगों का आजकल अमेरिका से प्यार नहीं है तो इतना इनका जो है पॉसिबिलिटी नहीं है और ये वैसे काफी ओपन है और एलजीबीटी वगैरह को काफी ये प्रमोट करते हैं। 8वें नंबर पे हैं पीटर कॉडवो एपिया टर्कसन, 76 ईयर्स इनकी एज है, बहुत ही हम्बल बिगनिंग से एक छोटे से अफ्रीकन गांव से इन्होंने शुरू किया था और जो है अगर ये इलेक्ट हुए तो ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पोप फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका। 9th नंबर पे आते हैं जी मैटियो मारियो जूपी, 69 ईयर्स इनकी एज है, बलोंगने से आर्चशिप जो है इनको दी गई थी और अगर ये इलेक्ट हुए तो ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इटालियन पोप सिंस 1978। और इसके साथ साथ कनाडा के भी कैनेडियन भी 5 कार्डिनल्स हैं इन द टोटल ऑफ 252, 4 जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है कि वो वोट आउट कर सकते हैं ऑफ 138 वोटर्स। कार्डिनल्स जो हैं उनका एज जो है 80 ईयर से कम होना चाहिए टू वोट दे आर। और ये जो कैनेडियन जो 5 कार्डिनल्स है ये है टॉमस कॉलिंस, जारल लेक्रा, माइकल जेर्नी, फ्रांक्वा लियो, मार्क गुले और ये तमाम के तमाम एलिजिबल हैं और ये भी पोप चूज किए जा सकते हैं। तो अब ये जितने भी मैंने आपको नेम्स बताए हैं ये बड़े ही वेटिकन में इम्पोर्टेंट किस्म के कार्डिनल्स हैं तो इनमें से कोई भी अब नेक्स्ट पोप जो है वो बन सकता है। इसराइल के जो स्ट्राइक्स हैं जी वो पैलेस्टाइन के ऊपर कंटिन्यू करते जा रहे हैं और 58 लोगों की और जिसमें डेथ हो गई है, ओवर हाफ ऑफ कैजुअलिटीज जो है वो
हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही इसके ऊपर दुनिया जो है उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आ गया है, और जो है वो गाजा सिटी के नॉर्थ के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा जो थे वो अटैक्स किए हैं, और ये जो खासतौर पे खान यूनस और रफा का एरिया है वहां पे दो डिफरेंट जो इसके अलावा जो ड्रोन अटैक्स इन्होंने किए हैं इसराइल ने वो सदर्न लेबनान के अंदर भी किए हैं। इसराइल जो है वो कहता है जी हमने हिजबुल्ला के लोगों को मारा है, वो कहते हैं जी ये हिजबुल्ला के लोग बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने इसराइल ने जो है बहुत सारे जो है अटैक्स किए हैं विलेज ऑफ आइटा आशब और रमीश के अंदर भी, इसके अलावा जो इन्होंने सिडोन के एरिया में भी बहुत सारे अटैक्स किए हैं, यानी कि जो वो सीज फायर थी उसकी इन्होंने खली वली की हुई और कॉन्स्टेंटली इसराइल अटैक करता जा रहा है। इसके साथ साथ यूएस भी कोई कम नहीं है, वो भी जो है कॉन्स्टेंटली अटैक यमन के ऊपर कर रहे हैं। अब ये जो यमन का अटैक था, ये जो इनके यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ, ये फिर से ये सारे का सारा जो है वो कहते हैं जी इन्होंने फिर से वही यूज किया है सिग्नल जो ग्रुप था, और इस दफा तो इन्होंने सारे वो जो स्केड्यूल थे F/A-18 हॉर्नेट के जिन्होंने टारगेट करना था हुतीस को, तो वो कहते हैं जी कि ये दूसरी जो इनकी चैट है ये भी सारी बाहर आ गई है और इनके वाइफ ब्रदर और पर्सनल लॉयर जो है उसके पास पहुंच गई है। अब इसको जो गवर्नमेंट है वो मानने को तैयार नहीं है, ट्रंप साहब ने भी आज इसको बहुत ज्यादा डिफेंड किया है। इसके अलावा जो चीफ पेंटागन स्पोक्स पर्सन है शॉन पर्नेल, उन्होंने कहा जी कि ये जो स्टोरीज आते जा रहे हैं ना ये ओल्ड स्टोरीज है एंड दे आर बैक फ्रॉम द डेड, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के जो फेक न्यूज है ये रिपीट करते हैं इस तरह का गार्बेज, और बड़ा ये एंथुजियास्टिकली इनको बताते हैं डिसग्रंटल करने के लिए, क्योंकि जो बहुत सारे डिसक्रेडिट करने के लिए इस टाइप के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे डिसग्रंटल जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के वो इनको इस तरह के झूठे खबरें देते हैं और ये फौरन छाप देते हैं उनको, जिनको खासतौर पर निकाला गया है लास्ट वीक में, तो ऐसे है। तो ये इनका जो इस तरह के जो होते हैं मीडिया अदारे उनका काम सिर्फ सेबरडाज करना है सेक्रेटरी को भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के एजेंडा को भी, और कोई भी इसके अंदर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। तो उनका उनके साथ साथ जो है ट्रंप साहब ने भी जैसे मैंने आपको कहा है कि वो उन्होंने भी डिफेंड किया। जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है उसने आज बड़ा ज्यादा कंसर्न शो किया एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज 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 न्यूज इन द वर्ल्ड अगर ये ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ये थ्रेट सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के जो सेटलर ऑर्गेनाइजेशंस है वो बोल रहे हैं कि हम अल अक्सा मॉस्क को गिराएंगे, और आपको तो पता ही है कि ये तो बड़ा मुसलमानों के लिए आपको पता ही है कि इस्लाम का थर्ड होलीएस्ट साइट है ये, तो अब ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो हिब्रू लैंग्वेज की सोशल मीडिया उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट किया जा रहा है कि यहां पे इसको मस्जिद को गिरा के इसकी जगह पे एक टेम्पल बनाया जाएगा। अल अक्सा मॉस्क का जो कंपाउंड है वो ऑक्यूपाइड वेस्ट जेरूसलम के अंदर है और ये तो है सिम्बल ऑफ पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी और मुसलमानों के लिए यू नो इन जनरल भी बहुत ज्यादा जैसे मैंने आपको थर्ड होलीएस्ट साइट है मुसलमानों के लिए। अब इसको एडमिनिस्टर तो करते हैं जॉर्डन को, लेकिन इसका एक्सेस जो है वो कंट्रोल करते हैं इजरायली सोल्जर्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट ज्यूज के लिए साइट भी है जो कि बिलीव करते हैं कि ये साइट थी फर्स्ट और सेकंड टेंपल्स की यहां पे, जिसको के रोमन्स ने 70 एडी के अंदर जो है बर्बाद कर दिया था। एक इससे कुछ दिन पहले एक एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मस्जिद को बिल्कुल कंप्लीटली बर्बाद करके मस्जिद अक्सा को, और उसकी जगह के ऊपर एक थर्ड टेम्पल बनाया गया है जिसको नाम दिया है नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, यानी कि उस वीडियो का जो था ये टाइटल था। ये इस चीज को ज्यादा हवा इसलिए मिल रही है कि लास्ट अगस्त में जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं नतन्याहू साहब के इतमर बेन गवीर, उसने कहा था कि यहां पे मस्जिद अक्सा की जगह पे एक ज्यूइश सिनेगॉग जो है इसके कंपाउंड में बनाने की जरूरत है, और ये पहले भी हो सक चुका है पैलेस्टाइन में, ये कुछ इतना वो नहीं है कि इसमें कुछ नई बात है। हेब्रॉन के अंदर जो इब्राहिमी मस्जिद थी उसके साथ भी यही किया गया था, जिसको कि कहा जाता था केव ऑफ पेट्रियार्क्स, उसको भी पार्टीशन किया गया था। तो अब अगर अल अक्सा मस्जिद को भी गिराया गया तो तब भी मुसलमान चुप रहेंगे, अब कुछ इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता है। वीकेंड के ऊपर जी ईरान और यूएस जो है उसका सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है रोम के अंदर चलता रहा, और कहा जा रहा है दोनों तरफ से ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी कि ये न्यूक्लियर टॉक्स जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, डायरेक्ट नहीं थे लेकिन फिर भी ये काफी सक्सेसफुल चले। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो है वो कह रहे हैं ये बड़ा कंस्ट्रक्टिवली चलते रहे हैं, और अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मीटिंग जो है वो रहेगा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसलिए क्योंकि कितना एनरिचमेंट होना चाहिए, कितने न्यूक्लियर जो वेपन्स है किस लेवल पे है क्या है, वो टेक्निकल टेक्निकल बातें जो है उसके लिए जो है टेक्निकल राउंड होगा। और कहा जा रहा है कि अब ये थर्ड राउंड फिर से ओमान के अंदर होगा अप्रैल 26 को। इसमें जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी जो मुलाकातें उनकी हुई थी मीडिया के साथ वीकेंड के ऊपर, उन्होंने भी कहा कि यस हमें कुछ लग रहा है कि इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है। ये मुलाकातें जो थी ये डेलीगेट्स के बीच में हुई थी जिनको के लीड कर रहे हैं ईरान की तरफ से अराकची और यूएस के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, आपको पता है बहुत बड़े मिडिल रियल एस्टेट के बिलियनियर हैं जिनको के ट्रंप साहब ने कहा है कि ये टॉक्स जो हैं वो करें। तो ये टॉक्स जो थी ये वीकेंड पे जो ओमान की एम्बेसी है रोम में उसमें हो रही थी, और बेचारे जो ओमानी फॉरेन मिनिस्टर थे बदल अल बुसैदी वो दोनों के बीच में शटल हो रहे थे, एक कमरे में जाते थे फिर दूसरे में, क्योंकि दोनों डिफरेंट कमरों के अंदर बैठे थे, एक तरफ की बात सुनते थे दूसरे को सुनाते थे दूसरे की बात सुनते थे। बहरहाल वो कह रहे हैं जी के जो अराकची हैं वो कह रहे हैं कि काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है बहुत सारे प्रिंसिपल्स और गोल्स के ऊपर, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक की जो टेक्निकल अपसेशन रहेगी वो भी इसी तरह की पॉजिटिव रहेगी। और अभी तक इसके बीच में जो बातचीत हुई है वो सामने नहीं आई है, नेक्स्ट वीक क्या निगोसिएशन होने वाले हैं उसके बारे में भी अभी इतना पता नहीं है, पता चलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। थाउजेंड्स ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो अपोनेंट्स हैं वो सड़कों पर वीकेंड के ऊपर देखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ये जो अमरीका की जो बड़ी डेमोक्रेटिक आइडियल्स थी इसको ही खराब कर रहे हैं। और अगर आप ये हमारा टीवी देखेंगे तो एक पोस्टर ये लोग कैरी कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने उनको हिटलर की तरह पेंट किया हुआ था, वैसे ही हिटलर की तरह की छोटी मूछें लगाए हुए थे और कह रहे थे कि ये हिटलर और मुसोलिनी की तरह जो है ये उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो इन्होंने थोड़े दिनों पहले जो किए थे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए थे जिसमें कि कहा गया था कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा और मास गवर्नमेंट जो वर्कर्स है उनको जो निकाला गया है उसके ऊपर ये रैलीज जो थे ये मैनहट्टन में थे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन में थे, मैसाच्यूसेट्स में थे। मैसाच्यूसेट्स में तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि यूएस रेवोल्यूशनरी वॉर का 250 ईयर्स मना रहे थे, फिर इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में, दूसरे बड़े सिटीज में थे। इसके अलावा कुछ जो है प्रोटेस्ट जो प्लान किए गए थे टेस्ला कार डीलरशिप्स के बाहर भी, क्योंकि एलॉन मस्क से लोग बहुत गुस्से हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसने जो है फेडरल गवर्नमेंट को डाउन साइज किया है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं जैसे कि ट्रंप साहब हमेशा कहते हैं आई एम द किंग, तो वो नारे लगा रहे थे देर आर नो किंग्स वी विल रिजिस्ट टिरनी। और इसके साथ जो ट्रंप साहब ने अभी अनाउंस किया है कि वो शटडाउन कर देंगे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ऑफिसेज और जो गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोग्राम्स का फंडिंग है उसको भी कट करेंगे और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन फंड जो है उसको भी कट करेंगे। तो उसके ऊपर लोग जो थे उस पर भी कुछ एक सेक्शन भड़का हुआ था जिन्होंने कि फिर प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब की ये सारी चीजें जो है अमरीका के अंदर सिविल राइट्स और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो रैली थी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर भी थी। तो जनाब ये इस तरह से जो है काफी बड़े प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहे। किंग चार्ल्स जो है जी अब उन्होंने किंग चार्ल्स जी ने इनवाइट किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को फॉर स्टेट विजिट इन मे, मंथ्स बिफोर ट्रंप साहब का जो विजिट है। ट्रंप साहब यूके को विजिट करेंगे सितंबर के अंदर और ये दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट विजिट बाय फ्रेंच लीडर जो कि अब किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कार स्टार्मर जो थे वो भी इनसे मिले थे और काफी ये लोग जो है ईयू के साथ टाइज जोर देना चाह रहे हैं उसको ब्रेक्सिट के बाद से, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके का जो ट्रेडिशनल एलाय था वो यूएस था कनाडा की तरह, तो वो तो अब इनसे दूर होता जा रहा है जब से ट्रंप साहब का प्रेसिडेंसी आया है। तो मैक्रों और कायर जो है वो काफी पास होते जा रहे हैं और वो काफी चाह रहे हैं कि एक ऐसा जो है ईयू का जो है कोलिशन बनाया जाए जिसमें कि यूक्रेन को ना सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और फिर जो है यूक्रेन के अगर अंदर सीज फायर आ जाता है तो फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। मैक्रों जो है वो जो है जिस वक्त किंग के साथ विंडसर कैसल में मिल रहे होंगे उसी वक्त एक समिट भी चल रही होगी यूक्रेन यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी पैक्ट्स के ऊपर एट लंदन समिट ऑन मई 19, जिसमें कि ये लोग बात करेंगे कि कैसे डिफेंस स्पेंडिंग को यूरोप के अंदर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो जो सबसे बड़ा पार्टनर था इसके अंदर वो यूएस था। हम इधर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और हम ब्रेक के बाद आते हैं फिर जल्दी से वापस।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं।
اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں, فاطمہ گروسرز مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹم اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان سازو آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر, نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
چاندنی بینکویٹ ہال,
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز, ساؤنڈ سسٹم انوویشنز. چاندنی بینکویٹ ہال,
30 ایئرز آف ہاسپیٹیلیٹی ایکسپیرینس. کارپوریٹ ایونٹ, ایگزیبیشن, ایکسپو اور اینی سیلیبریشن,
انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گولف کورس فیسلٹیز. چاندنی بینکویٹ ہال, فار اپائنٹمنٹ کال ٹوڈے ایٹ 9054588888 اور وزٹ چاندنی وکٹوریا.
اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین, جہاں آپ کو ملیں گے مزیدار کھانے جیسے کہ لاہوری گوٹ کڑاہی, شنواری گوٹ کڑاہی, نہاری, حلیم پائے, بریانی, سیخ کباب, چکن تکہ, شورما, پیزا, اور مزیدار لاہوری چھولے, پالک پنیر اور بہت سی ویجیٹیرین آپشنز. اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین, وہی دیسی انداز اور وہی دیسی ذائقہ. 1310 دندا اسٹریٹ ایسٹ مسیساگا یونٹ 3. آرڈر ناؤ, کال 416-526-6800.
پینٹرز آف جی ٹی اے فار یور ہوم پینٹ اور آفس پینٹ, انٹیریئر اور ایکسٹیریئر. پاپ کارن سیلنگ کو ریموو کرنا, واٹر ڈیمیج اف دیئر یلو اسپاٹس ان سیلنگ, کال پینٹرز آف جی ٹی اے. واٹر ڈیمیج میں اگر یلو اسپاٹس آپ کی سیلنگ پہ ان کو ریموو کر کے بے داغ کریں گے, ٹیکسچر اسٹائل پینٹنگ وچ از دا لیٹسٹ اٹالین اسٹائل پینٹنگ, یا وال پیپر لگوانا چاہتے ہیں تو کال کیجیے ٹیکسچر اسٹائل پینٹنگ کے لیے پینٹرز آف جی ٹی اے, 6472711974. محمد سلیم, 6472711974.
گھر تک پیسے بھیجنا کبھی آسان نہیں رہا ہے. آپ کے ہاتھوں سے انڈیا میں بیٹھے آپ کے اپنوں تک صرف کچھ ٹیکس کے ساتھ. جی ہاں, جب آپ کی فیملی کو ہو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت, تب ٹیپ ٹیپ سینس دیتا ہے آپ کو گریٹ کمپیٹیٹیو ایکسچینج ریٹ. نہ کمپلیکیٹڈ فارمز کی چنتا, نہ کوئی ہڈن فیس کا ڈر, جسٹ ہمارا ایزی ٹو یوز ایپ اور پیسے سیدھا گھر.
ڈاؤن لوڈ آر ایپ اینڈ یوز پرومو کوڈ ریڈیو 20 ٹو گیٹ این ایڈیشنل $20 آن یور فرسٹ سینڈ آف $200 اور مور. ٹیپ ٹیپ اینڈ سینڈ.
Spear and McCabe Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare kar sakte hain aap Harry Rosen, Burberry aur Hugo Boss se. 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga pe. Hum Sundays ko bhi open hain. انفارمیشن کے لیے کال کیجیے ایٹ 9056703388 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ spearandmcabe.com.
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں, چوڑیاں لے لو, کڑے لے لو, چینز لے لو, سٹون جیولریز. روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے, روبی جیولرز, 7086 ایئرپورٹ روڈ, 9056776888.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ریڈیو پروگرام سازو آواز, اور نیوز کے سیگمنٹ ہے, اور نیوز کے سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے جیسمین پرمار نے. اور جیسمین پرمار, اگر آپ نے اپنی کسی بھی قسم کی مارگیج کرانی ہے, آپ کا رینیول آ رہا ہے, یا آپ جو ہیں وہ گھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے اس کے لیے بھی مارگیج لینی ہے, یا آپ ہیلاک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بار ضرور جیسمین پرمار کو کال کیجیے, 6479235659 ان کا نمبر ہے. کی اسٹون فائنینشیل ایکسپرٹ جو ہے, پرنسپل بروکر ہیں جیسمین پرمار. اگین ان کا نمبر 6479235659. ایوری منڈے اینڈ فرائیڈے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن ابھی شاید وہ کہیں بزی ہیں, انہوں نے فون پک نہیں کیا, تو میں نے ان کا میسج آپ لوگوں کو دے دوں. اگر آپ نے مارگیج سلسلے میں بات کرنا ہے تو ایک بار ضرور جیسمین پرمار کو کال کیجیے. اگین نمبر 6479235659. اب بڑھتے ہیں ہمارے نیوز کے سیگمنٹ 2 کی طرف اور شازیہ ملک. جی
ہاں جی, آج پاکستان کے اندر بہت ہی سالملی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ملک کے بھی حالات چل رہے ہیں, دنیا میں بھی چل رہے ہیں, لوگ بھی بہت زیادہ افسوس میں ہیں, خاص طور پہ پیلسٹائن کی وجہ سے. تو 87th ڈیتھ اینیورسری جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, ان کی بڑی سومبر طریقے سے جو ہے وہ منائی گئی. پولیٹیکل لیڈرز اور سٹیزنز جو ہیں آف کورس انہوں نے بہت رچ ٹریبیوٹس جو ہیں ان کو دیے. فلاسفر تھے, انٹلیکچوئل تھے, اور بہت زیادہ ان کی جو ہیں وہ کنٹریبیوشنز ہیں, پولیٹیکل کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے کریشن کے اندر. اسپیشل سیریمونی جو تھی وہ پھر انہوں نے ہولڈ کی گئی تھی نیشنل کاؤنسل آف آرٹس اسلام آباد کے اندر. ملک کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سارے ایونٹس جو تھے اور سیمینارز, پوئٹری ریسیٹیشنز اور ڈسکشنز, اور ان کی لائف کے اوپر بہت سارے لیکچرز وہ کمیموریٹ کیے گئے تھے, آرگنائز کیے گئے تھے ٹو کمیموریٹ ہز لائف لیگسی. پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم کو ان کے ٹیچنگز اور فلاسفی اور سیلف ہوڈ اور ریفارمیشن جو ہے اس کو اپنانے کا ضرورت ہے. سر آپ کو بھی ضرورت ہے نا, خود بھی آپ کرو نا, دنیا خالی پاکستانیوں کو نہیں بولو نا. اور انہوں نے کہا جی کہ مسلم امہ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی کہا بالکل تھا علامہ اقبال نے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تاب کھا کے کاش کر. لیکن ابھی تو ہر کوئی اپنی وہ جو ہے نا علیحدہ علیحدہ منجی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنے بس انٹرسٹ کو کر رہا ہے. پاکستان کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے اندر بہت سارے ایم او یوز جو ہے وہ سائن کیے گئے ہیں ان ٹو انہانس کوآپریشن ان ڈفرنٹ فیلڈز لائک ٹریڈ اینڈ کلچر اینڈ کاؤنسلر سروسز. جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب, ان کی ملاقات اپنے یو اے کے کاؤنٹر پارٹ شیخ عبداللہ بن زائد الناہیان کے ساتھ ہوئے تھے, جو جس میں کہ انہوں نے یہ ایم او یوز جو ہے وہ سائن کیے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا کلچر جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے, اس سیکٹر میں بھی کافی ایم او یوز سائن کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاؤنسلر افیئرز, چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ایک جوائنٹ یو اے پاکستان بزنس کاؤنسل جو کھولنے کے ایم او یوز ہے وہ بھی سائن کیے گئے. یو اے کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ان کو فارن آفس کے اندر ڈار صاحب نے ان کو ویلکم کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ دو کنٹریز کے بیچ میں بہت سارے اولڈ فٹرنل ٹائز ہے اور ہمارا میوچل کمٹمنٹ ہے اور لو اور افیکشن ہے ہم سب کے بیچ میں, اور ہم دونوں ہی کنٹریز جو ہیں پیپلز ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. پائی جان آپ کا پتہ نہیں, لیکن یو اے ای واقعی لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے. شیخ عبداللہ نے بہرحال کہا کہ جی میں بہت خوش ہوا ہوں پاکستان کی ہاسپٹیلٹی دیکھ کے, یعنی آج سے پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا اتنا اچھا ہاسپٹیلٹی ہے. بہرحال جی انہوں نے بڑی پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ہمارے دلوں کے قریب ہے اور میرے تو پرسنلی میرے دل کے قریب ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ شیخ ناہیان کے زائد بن ناہیان کے بیٹے ہیں نا, تو اس لیے بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ واقعی آپ کا پیار ہے پاکستانیوں کے ساتھ. دبئی کے شیخوں کا بھی پیار ہمارے ساتھ اتنا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ہیں جی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑے کین ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہیں ٹائز ہم اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر جے یو آئی ایف اور جے آئی جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے انفارم کیا ہے کہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہم بنائیں گے جس کا نام رہے گا مجلس اتحاد امت کے ہم جو پیلسٹینینز کا وائس ہے اس کو ریز کریں گے. آج انہوں نے کہا کہ ہم اپریل 27 کو مینار پاکستان لاہور میں ایک بہت ہی میسو ریلی آرگنائز کرنا چاہتے ہیں دونوں مل کے ٹو شو سالیڈیرٹی ود دا پیلسٹینینز. اور یہ اناؤنسمنٹ جو ہے انہوں نے کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر لاہور میں, اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے جے یو آئی ایف کے چیف مولانا فضل الرحمان نے اور جے آئی کے جو امیر ہے حافظ نعیم الرحمان انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم کو بالکل لیڈرز جو ہے ان کو ان ایشوز کے اوپر مل کے کام کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یہ اس کی آواز اٹھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں پولیٹیکل کلائمیٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, پروویژنل پروونشل رائٹس, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مولانا نے کہا جی کہ مسلمانوں کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, پیلسٹینینز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا ڈیپ کنسرن ہے اس کے اوپر, اور انٹائر مسلم امہ جو ہے اس کا بھی ہونا چاہیے, تو ہمیں ان کی آواز کے لیے ہمیں ان کے جسٹس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. پولیس نے تقریباً اریسٹ کیا ہے 198 پاکستانیز کو ان ریسنٹ ویکس, کیونکہ کوئی 10 ڈفرنٹ گروپس جو ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے کے ایف سی کی جو ڈفرنٹ لوکیشنز ہیں پاکستان کے اوپر امڈ اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ اور جو انکنڈیشنل یو ایس بیکنگ ہے فار اسرائیل ان غزہ وار. اس کے لیے کے ایف سی جو ہے وہ کافی ٹارگٹ بنا ہے ابھی سے, کیونکہ جو اسلامک پارٹیز ہیں خاص طور پہ انہوں نے کافی اس کا بوائے کاٹ کیا ہے. یہ میسو جو اٹیکس ہوئے ہیں یہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے ڈفرنٹ جو 11 ریسٹورانٹس ہیں اس کے اوپر ہوا ہے, جس میں کہ پولیس نے
कुछ जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे उनको मारा धाड़ा स्टिक से, की तो जान ले दी, वेंडलाइज किया, और थाउजेंड्स इसके अलावा जो वीकेंड के ऊपर लोग थे, एंटी इसराइल जो प्रोटेस्ट था उसके लिए बाहर निकले हुए थे। ये जो भी लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स चल रही है और इसराइल जो बिल्कुल सीज फायर को मान नहीं रहा है, इसकी कॉल जो थी जमात इस्लामी ने दिया था, और इस्लामाबाद में तो ये जो पार्लियामेंट हाउस है इसके करीब ये सारा जलसा था। ये जाना तो चाहते थे रेड जोन के अंदर जहां पे के एम्बेसीज होते हैं, लेकिन वहां से जाने से इनको मना कर दिया गया था। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च्ड आल्सो टुवर्ड्स यूएस काउंसलेट इन कराची, लाहौर एंड पिशावर। बहुत ज्यादा हैवी पुलिस का जो था वो जाहिर है कि प्रेजेंस था, जो लाहौर और इन जगहों के अलावा पिशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और मर्दान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े रैलीज हुए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इतने बड़े जलसे नहीं निकले हैं जो कि अब निकले हैं। जो कि इस्लामाबाद की जो रैली थी उसमें वो लोग कहते थे कि हमको आगे जाने दो, लेकिन डिप्लोमेटिक एवेन्यू में उनको फिर नहीं घुसने दिया गया था। रना सनाउल्लाह और सिंध के जो सीनियर मिनिस्टर हैं शर्जील इमाम मेमन, उनके बीच में टेलीफोन का कॉल हुआ है और उन्होंने डिस्कस किया है जो कनाल्स का कंस्ट्रक्शन का मसला है, और दोनों कहते हैं जी कि हमारे बीच में एग्री हो गया है कि हम फेस टू फेस मिलेंगे और फिर इसके ऊपर हम जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग से आगे चलेंगे। रणा सलावा ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल ओपन टू टॉक्स है विद सिंध, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के जो लीडर है नवाज शरीफ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो भी सिंध के कंसर्न है उनको बिल्कुल एमिकेबल तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है। मेमन ने कहा कि यस बिल्कुल हमने अपना स्टैंड जो था सिंध का बता दिया है और पीपीपी जो है उसके सीरियस रिजर्वेशन बताए। हालांकि पीपीपी ने तो पहले कभी एतराज नहीं किया, अभी जब लोग मोर्चे निकालने लगे हैं तो तब पीपीपी को अचानक से ख्याल आ गया, पता नहीं अब ये क्या चक्कर है। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि पीपीपी चाहती है कि इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 1991 वाटर एकॉर्ड, और वो कहते हैं जी कि हम बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के साथ एंगेज करने के लिए तैयार है और लॉफुल रेजोल्यूशन इस इश्यू का चाहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान ने अनवेल किया है अपना जी स्पार्कली साइट, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो 2025 लाहौर के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज किया था ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जेम्स एंड ज्वेलरी शो, और इसके अंदर पाकिस्तान के बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो डिजाइनर्स के कपड़े थे वो भी नजर आए। लोग जो थे यहां पे डजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग ईयू, यूरोपियन यूनियन से, एशिया से, अफ्रीका से लोग आए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के फैशन शो की बहुत तारीफ की और खासतौर पर जो जेम्स है उनकी, अब जाहिर है उनकी नजर जेम्स पे या सारों की या मिनरल्स पे तो भी तारीफ तो जो है वो करनी बनती है ना, तारीफ नहीं करेंगे तो उनको कैसे हमारी भोली कौम जो है वो सारी चीजों के ऊपर कब्जा देगी, है ना, तारीफ करेंगे फिर मिलेगा ऐसे कब्जा, तो बड़े समझदार हैं ये यूरोपियन यूनियन वाले, तो ऐसा है। अच्छा जनाब, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे इंडिया में अंदर, और पालम एयरपोर्ट पे अपनी फैमिली के साथ इन द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया ये आए हैं। अप्रैल 21 से 24 तक ये यहां पे रहेंगे, इससे पहले ये पोप के साथ थे इटली के अंदर, उनसे मुलाकात कर रहे थे। जब ये लैंड किए हैं यहां पे तो सीधा ही अक्षरधम टेम्पल जो है उसमें चले गए थे, क्योंकि इनकी वाइफ उषा जो है आपको पता ही है हिंदू हैं, तो वो और इनके तीन बच्चे इवान, विवेक और मैरिबल जो हैं ये सारे उधर गए। उसके बाद ये मोदी जी के रेजिडेंस पे आ गए जो कि लोकेटेड है 7 लोक कल्याण मार्ग के ऊपर, फिर ये अब विजिट के लिए निकले गए जयपुर और आगरा थर्सडे के मॉर्निंग को। जो यहां पे इनको रिसीव किया था जब ये आए थे इंडिया में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, और फिर इनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, इनके और मोदी जी के बीच में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत रहेगी, खासतौर पर कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप। उन्होंने कहा जी कि जब इस लेवल के पार्टनरशिप्स होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो इश्यूज रेलिवेंट हो जाते हैं और उनके ऊपर बातचीत बड़े इजीली हो जाती है, खासतौर पर जाहिर है कि जो टैरिफ्स के ऊपर ये लोग जरूर बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो होर्डिंग्स थे वो बड़े बड़े लगे हुए थे जो कि इनको वेलकम कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस जो थी उसने कई दफा और वो और भी आगे दो तीन दिन जो है सेवरल टाइम्स जो है वो एक आइटिनरी जो है ट्रैफिक का डालते रहेंगे टू एंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, और उन्होंने लोगों को एडवाइज किया कि आप कुछ रूट्स जो सेंट्रल दिल्ली के हैं वो आप ना ले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर ले। वैन्स का जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आपको पता ही है सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाए हैं ट्रंप साहब ने, और ट्रंप साहब जो है इससे जो है पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इसमें शायद बातचीत होगी। अलबत्ता जो बच्चे थे वो बड़ा खुश रहे मोदी जी को मिलकर, उनका जो एक बेटा है छोटा वाला वैन्स का, उसका हाथ पकड़ के वो उधर उनको घुमाते रहे, बाकी बच्चों को भी वो दिखाया, अपना बाग वाग वहां पे दिखाया और उनके साथ खेलते रहे, बड़ी अच्छी बातें की। उसके बाद ये तीनों बच्चे जो थे इनको जो पीकॉक के फेदर्स, मोर के जो पर होते हैं, वो भी इनको उन्होंने दिए। तो काफी जो है कैमराडरी चल रही थी बीच में से। अच्छा जनाब, कांग्रेस लीडर्स जो है वो अब कह रहे हैं कि 24 अप्रैल तक नेशन वाइड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो चार्ज शीट आया है अगेंस्ट सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी इन द नेचुरल हेराल्ड केस, और उसके अंदर बाकी लोगों के भी बहुत से जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनका भी नाम है। मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन कल्याण, उन्होंने एक्स के ऊपर बोला कि विजयवाड़ा से वाराणसी तक और कश्मीर से थिरुवनंतपुरम तक कांग्रेस जो है वो जो बीजेपी के झूठ है उनको एक्सपोज करेगा इन द एंटी नेशनल एफर्ट्स, जिसके के अंदर ये मॉन्यूमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको किल करने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एक हमने लिस्ट ऑफ 57 कांग्रेस जो है लीडर्स जो है वो उसको किया है कि 57 सिटीज ऑफ इंडिया में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बीजेपी का झूठ सामने लेकर आएंगे। ईडी की ने ये जितना भी फाइल किया है इन अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस इन द नेशनल हेराल्ड, ये सब गलत है। एक जो इससे पहले मीटिंग की गई थी वो इनके जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे उनके घर पे थी, और उसमें बताया गया था कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी जो है वो यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट इंचार्ज और बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स थे वो आए हुए थे खर्जे साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी कि खर्जे साहब ने कहा कि आप ईडी के एक्शन से हमको डरा धमका नहीं सकते हो मोदी जी, और आपका जो बीजेपी का फॉल्स नैरेटिव है उसको हम बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। उन्होंने चार्ज किया मोदी जी की गवर्नमेंट को कि वो कांग्रेस को डरा रहे हैं और उनके जो टॉप लीडर्स है उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा पार्टी जो है वो आपके सामने सच लेके आएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश जो है उसने भी कहा कि ईडी का ये जो एक्शन है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और उसने एक्यूज किया मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह को कि वो सेंट्रल एजेंसीज को यूज करते हैं टारगेट करने के लिए अपोजिशन लीडर्स को। आमिर खान को आपने देखा होगा बड़े ही सेंसिटिव रोल में जो कि उन्होंने किया था तारे जमीन पर, लेकिन अब जो है उनकी नई आ रही है एक मूवी जिसका नाम है सितारे जमीन पर। तारे जमीन पर नहीं, सितारे जमीन पर। वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही डिफरेंट होगी तो ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के ऊपर, यानी कि जो स्पेशल पीपल है उनके ऊपर, लेकिन इसके अंदर लव लाइफ फ्रेंडशिप के ऊपर बात करेंगे। वो कहते हैं जी कि तारे जमीन पर तो आपने देख के रो पड़े थे, लेकिन इस फिल्म को देख के आप हंस पड़ोगे। ये कॉमेडी है लेकिन इसका थीम सेम है। इनका जो कैरेक्टर तारे जमीन पर था वो निखुम का था, वो बहुत ही सेंसिटिव था, बहुत ही अच्छा था। वो कहते हैं सितारे जमीन पर जो है उसमें मेरा जो गुलशन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, मैं बहुत ज्यादा रूड हूंगा इसमें, पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इंसल्ट करूंगा हर किसी की, फाइट करता रहूंगा अपनी वाइफ और मदर के साथ, बास्केटबॉल कोच के तौर पे ये नजर आएंगे और ये मारे पीटेंगे भी सीनियर कोच को मूवी के अंदर, आई मीन ऑफकोर्स। तो वो कहते हैं जी कि इस आदमी का ये जो कैरेक्टर रहेगा सितारे जमीन पर उसके बहुत सारे इंटरनल इश्यूज रहेंगे, तो आपको मजा आने वाला है, ये थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, तो वो जो गुडी गुडी मेरा जो होता था इमेज उससे ये डिफरेंट है। और जनाब, हिंदुस्तान का हाईएस्ट पेड डायरेक्टर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि या तो संजय लीला भंसाली है या करण जौहर है या मे बी इवन जो है वो हो सकते हैं दूसरे, कोई नहीं, कोई इसमें से नहीं है। तेलुगु फिल्म मेकर एसएस राजामौली जो है वो इंडिया के हाईएस्ट पेड फिल्म डायरेक्टर है, और वो चार्ज करते हैं जी 200 करोड़ पर फिल्म, और इतना तो वो कहते हैं जी शाहरुख खान और सलमान भी चार्ज नहीं करता है। दिखाएं जरा उसकी, राजामौली की तस्वीर दिखाएं जी जरा, शाहरुख खान के साथ जो है, तो वो कहते हैं जी कि वो भी इतना चार्ज नहीं करते हैं, राजामौली जितना चार्ज करता है। तो ये कहते हैं जी ये तो एक तो पहले ही अपफ्रंट फीस लेते हैं, प्रॉफिट शेयर्स लेते हैं, और फिर जो राइट्स होते हैं सेल के उनके ऊपर भी ये बोनस लेते हैं, इसकी वजह से इनका शेयर, और जितने बड़े शेयर्स होंगे उतना बड़ा इनका भी शेयर उस मूवी पे रहेगा। और इनको जो फेम मिला था, आपको पता ही है कि बाहुबली फ्रेंचाइज जो थी, जिसने करोड़ों डॉलर्स जो थे, रुपए जो थे वो कमाए थे, 500 करोड़ जो है उसने हिंदुस्तान में और फिर उसके बाद बाहर भी बहुत सारा पैसा कमाया, उसकी वजह से इनको बहुत फेम मिला। शाहरुख खान और सलमान खान जो है वो 150 से 180 करोड़ पर फिल्म लेते हैं। हाँ, तो ये तो एक्टर भी नहीं है, कैमरे के पीछे है, फिर भी इतना लेते हैं। रानी मुखर्जी जो हैं वो फिर से नजर आएंगी फियरलेस कॉप शिवानी शिवाजी रॉय इन द अपकमिंग फिल्म मर्दानी 3। ये जो थर्ड फ्रेंचाइज में फिल्म है वो आने वाली है। मेकर्स ने आज इसका फर्स्ट लुक जो है वो रिलीज किया है। यशराज मूवीज ने इंस्टाग्राम पे जो ये फर्स्ट लुक डाला है, इसके अंदर ये देखी जा रही है ब्लैक शर्ट ब्लू डेनिम्स में, ब्लैक बूट्स में, और गन लेके और कैमरे की तरफ देख रही है। और यशराज मूवीज ने कहा था काउंट डाउन बिगिंस फॉर मर्दानी 3 ऑन होली, गुड विल फाइट ईवल एज शिवानी रिटर्न्स टू बिग स्क्रीन और ऑन February 27, 2026, और जो होली रहेगी वो March 4, 2026 को होगी। आज जनाब जो कराची किंग्स है PSL 10 का जो मैच था 11th, उसमें उन्होंने पिशावर जलमी को हराया एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। किंग्स ने पहले टॉस विन किया था और ऑप्ट किया था फील्ड करने के लिए अगेंस्ट जलमी। हालांकि जो है आज बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, फिर भी पूरी टीम जो है 147 पे आउट हो गई फॉर 8 ऑन 8 विकेट्स। किंग्स जो है उन्होंने 148 for 8 बनाए इन 19.3 ओवर्स में। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट जो हैं रोमन रेइस, वो अब ब्रेक ले रहे हैं PSL से, क्योंकि उनका बहुत ही ट्रेजिकली सिस्टर का डेथ हो गया है, जिसकी डिटेल्स उन्होंने एक्स के ऊपर किया शेयर, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बहन के लिए दुआ करें, और इसलिए ये ट्रेवल नहीं कर सकेंगे अब आने वाले मैचेस में यूनाइटेड के साथ। शादाब खान लेड साइड जो है उसका अब जो नेक्स्ट मैच है वो मुल्तान सुल्तान के साथ है, मुल्तान में ही April 23 को, मगर शायद ये नजर ना आए, ये शायद रीज्वाइन करें अपने टीम को इन लाहौर ऑन April 30। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के जो मेंटर है सर विवियन रिचर्ड्स, उसने कहा है जी कि मेरी टीम जो है वो इट विल मेक अ स्ट्रांग कम बैक इन PSL 10 2019 की जो चैंपियन टीम है काफी डिफिकल्ट पोजीशन में है, फोर्थ नंबर पे है, सिर्फ एक गेम इन्होंने जीता है 3 मैचेस में से। ये वो कहते हैं जी कि शायद जो लाहौर का वेन्यू है वो लकी रहेगा, पहले 2 मैचेस लूज करने के बाद जो है मुझे ये नहीं लगता कि टीम का फुल पोटेंशियल चला गया है, डिफरेंट जगह का डिफरेंट जो है वो एनवायरमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि दे विल डू बेटर। और इन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ किया भी जो रिसेंटली मॉर्ट चैपमैन ने ज्वाइन किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि बहुत ही स्टेलर किस्म का इनका परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड में एट द इंटरनेशनल लेवल, और उन्होंने कहा जी कि उसकी बहुत ही ग्रेट एबिलिटी है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी कि नो मैटर हाउ स्ट्रांग अ टीम इज, कभी तो वो जरूर हारती ही है। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जो कि अब अपना करने जा रहे हैं इन ऑगिरल एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक फ्रॉम May 24 इन बेंगलुरु इंडिया। और उन्होंने जितने भी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस है जैसे कि एंडरसन पीटर्स, जूलियस येगो, थॉमस रोलर, अमेरिकन कर्टिस थॉमस, और भी बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स को वो बुला रहे हैं, तो उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बोला कि मैंने इनवाइट किया है पाकिस्तान के अरशद नदीम को भी, जिसने आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में हराया था और गोल्ड जीता था, तो उन्होंने कहा जी मैंने उनको इन्वाइट भेजा है, और उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं अपने कोच से बात करके डिस्कस करके आपको जाऊंगा, लेकिन आई मीन ऑफकोर्स मुझे यही लगता है कि उसको जब तक गवर्नमेंट का क्लियरेंस पाकिस्तान से नहीं मिलेगा वो नहीं आ सकेगा, तो हम उसका पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास फुल लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन आ रहा है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तो जनाब जी ये थी खबरें, और जैसा बताया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर कल मैच खेलेंगे PSL में, तो देखते हैं जनाब क्या होता है। आज के हिसाब से पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड यू हैं, 4 मैचेस खेले हैं, उन्होंने चारों ही मैच जीते हैं और इनके 8 पॉइंट्स हो गए हैं, टॉप कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आज जो है वो कराची किंग्स आ गए हैं, इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, इसमें से 3 मैचेस इन्होंने विन किए और 2 मैचेस लूज किए हैं, तो इनके 6 पॉइंट्स हैं। सेकंड नंबर पर लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पर, इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैच जीते हैं और 1 मैच इन्होंने लॉस किया था। पिशावर थोड़ा सा बैड लक चल रहा है, आगे पीछे चल रहे हैं। चार मैचेस खेले हैं, एक जीते हैं और तीन मैचेस हारे हैं। और आपको देखा है ग्राउंड में आज हालांकि कराची के साथ खेल रहे थे, लेकिन जो क्राउड की तरफ से भी जो एक प्रेशर है, आई डोंट नो कि जो उसकी फैन फॉलोइंग है जानी की, वो बहुत ज्यादा है। तो वो आज भी ग्राउंड में जो है वो सारे जो है नारे लग रहे हैं जालमी जालमी। तो पिशावर जालमी आप चौथे नंबर पर हैं और मुझे लगता है कि
आज बाबर बहुत अरसे के
बाबर ने आज अच्छा खेला, अच्छा खेला, लेकिन वो एंड तक ले जाने वाली इनिंग्स जो है ना वो अभी हम वेट कर रहे हैं बाबर से। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेटा की बात कर रही थी अभी शादी जी, तीन मैचेस खेले इन्होंने, एक मैच जीता है और दो मैचेस जो है वो हार गए हैं। और मेंटोर से अभी शादी जी ने न्यूज सुनाई, कह रहे हैं कि सीजन 10 में अच्छा प्ले करेंगे, देखते हैं। और जो सबसे नीचे है मुल्तान सुल्तान, तीन मैचेस खेले हैं और तीन मैचेस हार गए। अच्छा देखिए, बच्चे भी मैचेस मेरे देखते हैं ना, फॉलो करते हैं क्रिकेट को, यहां भी खेलते हैं। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार वो रिजवान फिर हार गया, जब रिजवान हारा तो कहते बड़े वाले ने मुझे क्या कहा, बाबा वो लर्न कर रहे हैं। तो आपको याद है रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हार के भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी हार पे लर्न
करते हैं।
तो अब बच्चे भी आजकल जो है ना, जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड बच्चे, वो जो है उनको भी पता है कि यार क्या हो रहा है, कैसे चल रही है क्रिकेट। तो समटाइम अफसोस ही होता है। हमारे स्टार्स प्लेयर इस तरह की जब बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके,
उनकी जैसे मेरा मुंह फटे मुंह बना हुआ है, उनकी किस्मत फटे मुंह बनी हुई है आज।
किस्मत का तो दोष नहीं है, मैं किस्मत को तो फटे मुंह नहीं कह सकता, किस्मत सबकी ही अच्छी होती है। वो आपके अपने हमाल, अपने एक्ट और आपकी मेहनत, आपने कितनी मेहनत की है बेसिकली वो मैटर करती है, और बाकी फिर अल्लाह जो है उसको चमक लगा ही देता है। ये बिलीव है मेरा। तो रिजवान साहब आपने भी अब थोड़ा सा बहुत लर्न कर लिया, तो अब मुझे लगता है कि अब खेलने का वक्त भी आ गया। आपने तीन मैचेस में तीनों हारकर बॉटम पर आप आ गए। तो ये सब थी पीएसएल की अपडेट। कल जो है वो मुल्तान के साथ लाहौर का मैच है, देखते हैं कौन जीतता है कैसे करते हैं। टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक ले लेते हैं शादी जी, फिर वापस आते हैं हम आपके साथ 8 बजे तक हैं जनाब। 416-6801778 एडवांस पोलिंग आज 9 बजे तक है,
9 बजे तक है।
तो जनाब हमने तो खैर सैटरडे, आपने भी शायद सैटरडे
पास कर दिया,
तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक जाकर अदा कर लिया। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया जनाब, तो आज एडवांस पोलिंग का आखिरी दिन है 9 बजे तक।
मैं कह रही हूँ बेशक जाया भी करना है, अगर
वोट जाया जाके जाया क्या,
जाया भी कर दो, लेकिन जाओ जरूर।
जो भी आपको पसंद है आप जाके वोट डालें उसको, और रिगार्डलेस के आपको लगता है कि नहीं जी आप पॉपुलर वोट पर ना जाएं।
नहीं, नहीं,
मेरा मानना है कि आप
नहीं, नहीं, बंदा देखो,
बंदा देखें कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या
पॉलिसी।
देखें ना पॉपुलर वोट भुगत रहे ना, ट्रंप साहब आ गए तो पॉपुलर वोट ही आ गया ना। तो आज देख लें क्या चल रहा है, हालात जो हैं वो उनके मानने की, वो कहते हैं मैं जो करूं वो सही है, दूसरे जो करें।
अच्छा अब इसको इलेक्ट भी किया और अब मोर्चे भी निकाल रहे हैं पूरे,
और आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं।
अब पूरे मुल्क में जो है वो निकाल रहे हैं जी, वो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। और इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट थे, अगर तुम देखते दो ही जगहों पर बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक तो पाकिस्तान में चल रहे थे और एक अमरीका में चल रहे थे। मैंने कहा लो भाई बिल्कुल भाई भाई जो है मुकाबले पे चला रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख
रहे हैं।
हाँ हाँ, पाकिस्तान से हर कोई आजकल सीख रहा है,
सीख रहा
है, सीख रहा है, तो सीख रहा है। यस यस,
अब पावल साहब के पीछे पड़े हुए हैं, वो कहते हैं मतलब आपको बंदा पसंद नहीं है, कहते हैं जी वो कम नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई मेरी मर्जी। कल को वो बात हो जाए कि कारनी साहब कहें बैंक गवर्नर साहब से बैंक ऑफ कनाडा के भजन नीचे करो इंटरेस्ट रेट, वरना तुम फायर हो। यार मतलब कुछ तरीका होता है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब आप ऐसे कहें, वो पीछे मैं रोजाना हेडलाइन यही देख रहा हूँ कि वो पीछे पड़ गया उसके। जो है ना वो गवर्नर साहब जो फेडरल रिजर्व के जो चेयर साहब है, चेयर करते हैं, उनको फारिग करो। कहा दुनिया, मतलब जब देखो मुझे समटाइम अच्छा भी लगता
है, जो है
दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, सुपर पावर अमरीका, दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका, आज वो कुछ हो रहा है जो हम पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में भुगतते रहे।
इसलिए हम भी अब आपसे बोलेंगे दी पाकिस्तान, आज से दी पाकिस्तान है, पास दी यूनाइटेड स्टेट्स खाली क्यों है, ये दी पाकिस्तान भी होना चाहिए, बल्कि हम द बोलेंगे, द पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मुल्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो द पाकिस्तान, और ये दी यूएस।
तरह जी इन्होंने अपना फतवा सुना दिया, जर्नलिस्ट हैं सुना सकती हैं। तो आइए टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं। और शिकायत करने का नंबर 416-6201778। अगर कहीं आप ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां गड्ढे सड़क पर ज्यादा हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत सारे एरिया में टूटी फूटी सड़कें, और
अंडे मार दिए और आपके टायर फिसल रहे हैं,
भाई ये इनके इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एक गड्ढे हैं आसपास के तारों की झुरमड़ में आप फंस गए, बहुत हाई टेंशन वायर्स आजकल, वैसे ही टेंशन बहुत है, तो एक नंबर डायल कीजिए बहुत ही जबरदस्त, इस पे फिर आप मेरी क्रिस्टल क्लियर आवाज सुन सकेंगे, इनका नहीं पता मेरी सुन सकेंगे, 6478724900 टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं।
लोगों को वैसे आमिर पता चल गया कि जैसे वो ट्रंप अपने आप को आई एम द किंग करता रहता है ना, उनको भी पता चल गया यहाँ पे भी एक जो है ना अपने आप को आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, मैं खूबसूरत आदमी, मेरी आवाज अच्छी, ये फलां दमका,
दुनिया में पीछे चंद लोगों में से एक मैं भी हूँ।
हाँ, ट्रंप
टू जो मैं कम और हम ज्यादा बोलता है, मैं कम और हम ज्यादा।
क्यों तुम्हारे साथ क्या 10-12 लोग तुम लेके चल रहे होते हो?
टीम है ना पूरी, अब 770 बैठे हम, इज अ 770 टीम राइट, इट्स नॉट लाइक मैं
नहीं, तुमने कहा हम से, मेरी आवाज आपको किरीस्ती
इंडिविजुअल, आवाज तो मेरी जा रही है ना, इसमें उस पर इंडिविजुअल बंदा कह सकता है मेरी आवाज,
तुम 770 के ट्रंप हो, ट्रंप टू हो तुम।
ब्रेक ले लेते हैं इससे पहले फायर हो जाए, और गर्मियों में फायर होने का कोई मूड नहीं है वैसे। 4166201778 हमारा नंबर है, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, प्रोग्राम में वापस आते हैं।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्फाई के जरिए, पैसे पहुंचे मिनटों में, वो भी आसान और महफूज तरीके से, गुड एक्सचेंज रेट के साथ, $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैशबैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैशबैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। लैम्फाई की 10% कैशबैक ऑफर के लिए आज ही लैम्फाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें, विजिट lamfi.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये